जैसे ही तरुण ने विनित के बारे में कहा कि वो कॉन्फ्रेंस रूम में है और उसने उसे डिस्टर्ब ना करने को कहा है, अयांश थोड़ा हैरान हुआ और कहा, मैं देखता हूँ। इतना कहकर अयांश कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ने लगा कि तरुण पीछे से बोला, सर कॉफ़ी वहीं भिजवा दूँ? अयांश मुड़कर उसकी ओर देखते हुए बोला, हाँ भिजवा दो, और खुद से कहते हुए आगे बढ़ गया, वरना मेरी कॉफ़ी पी जाएगा। विनित कॉन्फ्रेंस रूम में लैपटॉप के सामने बैठा था। जैसे ही अयांश बिना नॉक किए कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा और विनित को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विनित फट से चेयर से उठ गया। विनित उस वक्त पसीने से तर बतर था। अयांश विनित की ये हालत देख थोड़ा परेशान हुआ और तेजी से उसकी ओर आते हुए बोला, आर यू ओके? वो पहले ही पसीने से तर बतर था और अचानक अयांश को सामने पाकर विनित के होश उड़ चुके थे। उसे पूछने पर भी वो चुप रहा। अयांश फिर बोला, कुछ कहो, बोलो, ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें? एसी तो चल रही है, फिर तुम्हारी ये हालत? विनित को हैरानी से देखते हुए। विनित अपने हाथ से माथे का पसीना पोंछते हुए बोला, वो क्या वो? कहते हुए अयांश ने टेबल पर रखे लैपटॉप पर नज़र डाली और एक ही पल में उसके विनित को लेकर परेशानी वाले एक्सप्रेशन बदल गए और वो विनित की ओर गुस्से से घूरने लगा। विनित अपना हाथ आगे करते हुए बोला, देखो गुस्सा नहीं अयांश, गुस्सा नहीं। जिसके बिना कहे या बस एक बार कहने पर तुम जिसको सब कुछ दे देते थे, उसने ये सब क्यों किया? क्यों? सवाल भरी नज़र से। तभी अयांश विनित को अंगुली दिखाते हुए बोला, अपना मुंह और दिमाग दोनों चलाना बंद करो, बंद। विनित बोला, मेरे चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है, और तुम ऐसे कैसे चुप रह सकते हो? इतनी बड़ी बात हो गई और जिक्र तक नहीं? अयांश बोला, हाँ नहीं करता जिक्र। वैसे भी तुम्हें तहकीकात करने का बहुत शौक है, तो जाओ कर लो, खुद पता कर लो, मैं कुछ नहीं बताने वाला तुम्हें। इतना कहकर अयांश वहां से जाने लगा कि विनित ने उसकी बाँह पकड़ ली। माना तुम नहीं बताना चाहते हो और मैं पूछता तो भी नहीं बताते, इसलिए मैंने खुद ये रास्ता चुना क्योंकि मुझे जानना था। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे कर सकता है वो? और ये सब क्या है? चिल्लाकर लैपटॉप की ओर हाथ से इशारा करते हुए। तभी अयांश ने अपना हाथ झटक दिया और लैपटॉप उठाकर गुस्से से दीवार में दे मारा। ये देख विनित अपना सिर पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए बोला, अयांश। अयांश विनित की ओर मुड़ा और उसकी कॉलर पकड़ते हुए बोला, मिल गया जवाब, और जो काम है तुम्हारा वो करो, अपने उस काम से मतलब रखो, मुझसे सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? और इतना कहकर अयांश विनित को छोड़ वहां से चला गया। तभी पियोन कॉफ़ी लेकर आ गया। सर कॉफ़ी। अयांश जाते जाते हाथ मारकर कॉफ़ी गिरा गया और उसी वक्त ऑफिस से चला गया। अयांश को गुस्से में जाते देख तरुण कॉन्फ्रेंस रूम में गया, जहां विनित अपना सिर पकड़े चेयर पर बैठा था। तरुण वहीं खड़े पियोन को वहां से जाने को कहता है। उसके जाते ही तरुण विनित के पास आकर बोला, व्हाट हैपेंड सर? और बॉस गुस्से में क्यों थे और ऐसे चले गए? ऑल ओके? तभी विनित फट से चेयर से उठा और अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोला, ऑल ओके होता ना तरुण जी, तो ऐसे नहीं जाता हमारा बॉस। वेट, तुम्हें पता था? पता था ना जो हुआ है? देखो मुझसे झूठ मत कहना और ना ही अपने बॉस जैसे छुपाने की कोशिश करना, अब क्योंकि मैं जान चुका हूँ। ये सुन तरुण अपनी नजरें झुका लेता है। सर सर, आप किस बारे में बात कर रहे हो? सीरियसली? एक पल विनित ने कहा और दूसरे ही पल तरुण की कॉलर पकड़कर बोला, नाउ टेल मी, सब कुछ जानना है मुझे, पूरी डिटेल चाहिए मुझे, और मुझे क्यों नहीं पता है इस बारे में? तरुण विनित की ओर देखते हुए कहता है, वो अयान सर नहीं चाहते थे ये बात किसी को भी पता चले, आपको भी। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, वो बोले कि मैं हैंडल कर लूंगा, जो जैसा चल रहा है, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। तभी विनित तरुण को छोड़ देता है और टेबल पर मुक्का मारते हुए कहता है, सिट, अकेला अकेला कैसे कर लेगा इतना बड़ा लॉस हमारे बिजनेस में? मेहरा इंडस्ट्रीज की सारी कंपनियां बंद होने पर हैं, बंद क्या, खत्म होने पर हैं, और अयांश के साथ तुमने भी ये बात मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? तरुण विनित की ओर देखते हुए कहता है, बॉस कहते हैं अपनी हार का शोर मचाने से हम खुद लोगों को मौका दे देते हैं अपना तमाशा बनाने का, और फिर हमारा मजाक ही नहीं बनता, हम कमजोर भी पड़ जाते हैं, इसलिए जैसे पहले खामोशी से मेहनत कर पाया था, इस बार भी वैसे ही होगा। विनित बोला, रियली? और ये बात घर की नहीं मार्केट की है, और वहाँ बात आग की बाह फैल जाती है, आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा सबको, और ये कोई छोटी बात नहीं है। आई नो विनित सर, पर खुद ही ढिंडोरा क्यों पीटे, जब पता लगना है लग जाएगा, क्या पता तब तक सिचुएशन हमारे कंट्रोल में हो जाए, और अब तो आप भी हैं तो कैसे सब डूब पाएगा? मैं तो था ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे बॉस को ही सब करना है, मैं थोड़ी कुछ करूंगा, वैसे भी गहरे समुद्र और भरे तूफान में हमारी नाव गोते खा रही है, समझ रहे हैं ना आप? विनित परेशान होते हुए बोला, समझ रहा हूँ, और जब आप और अयांश साथ हैं तो हम सब हमारी नाव को डूबने से बचा ही लेंगे, पूरा विश्वास है मुझे, तरुण ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। विनित भौंकलाया हुआ बोला, सही है, कोई डील हाथ से नहीं जा रही है, पूरा बिजनेस खत्म होने को है, पर फिर भी बात इतने हल्के में ली जा रही है। डिस्गस्टिंग मैनेजर तरुण, आई कांट अंडरस्टैंड कि ये सब हुआ कैसे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी तो हो सकती है, सक्षम वालिया ऐसे थोड़ी कर सकता है। तरुण बोला, कैसे किया ये तो पता नहीं, बस किया उन्होंने ही है, इतना ही बताया मुझे बॉस ने। कब कैसे मुझे भी नहीं पता। बस जितना आप जानते हैं उतना ही मुझे मालूम है कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है। पर ऐसा ही हुआ है सर, और बॉस ने कुछ नहीं कहा और कहने वाले भी नहीं है। आई थिंक वो बात क्या उसके बारे में जिक्र तक करना नहीं चाहते हैं। क्यों किया ये मुझे भी पता नहीं चल पा रहा है, और बॉस से कौन सवाल जवाब करे। इतनी हिम्मत कहाँ है किसी में सर। बट प्लीज सर, अगर इस बिजनेस के कर्ता ही कमजोर पड़ेंगे, टूटा हुआ फील करेंगे, हार मान लेंगे, तो एम्प्लॉयज वो तो पहले ही हाथ खड़े कर देंगे। समझने की कोशिश कीजिए। आई नो आपको बुरा लग रहा है, बट शांति से काम लीजिए। रिक्वेस्ट करते हुए, शांति से काम लो आप और आपका बॉस। ये बोलते हुए विनित वहां से चला जाता है, और तरुण भी विनित सर कहते हुए उसके पीछे चला जाता है। आयांश पूरा दिन घर से बाहर रहा, पर थोड़ा जल भी। वो 9-10 के करीब घर पहुंच गया। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, किचन से आते हुए राधे बोला, आयांश बाबा आप आ गए, वो भी जल्दी। ये सुन आयांश उसकी ओर बढ़ा और पास जाकर बोला, तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है? मेरा घर, मेरा ऑफिस, जब मर्जी आऊं। राधे नजरें झुकाते हुए बोला, माफ करना आयांश बाबा। तभी आयांश ने राधे के हाथ में पकड़ी ट्रे की ओर देखा, जिसमें खाना था। ये दादू के लिए ले जा रहे हो? तुम्हें कितनी बार कहा है उनको टाइम पर खाना और दवाई दे दिया करो। राधे बोला, मालिक तो खाना खा चुके हैं और दवाई भी ले ली, और अब अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। ये तो मैं उनके लिए ले जा रहा था, पूरे दिन से कुछ नहीं खाया, और मालिक बोले कि जाओ एक बार और पूछ लो, क्या पता खा ले, नहीं तो फिर बेहोश हो जाएंगी, बीमार पड़ जाएंगी। तो आयांश बाबा मैं उन्हें देने जा रहा था। ये सुन आयांश गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, एक तो सबने जीना हराम कर रखा है, परेशान करने की कसम खा रखी है, जाओ देकर आओ और कहना चुपचाप खाना ले। अगर सोच रही है भूखी रहने से मुझे कोई फर्क पड़ेगा या मैं उसे यहाँ से जाने दूंगा, तो ऐसा तो होने से रहा। राधे हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, जी पहले आपके लिए खाना लगा दूंगा। आयांश उसे घूरते हुए बोला, मैंने कहा नहीं ना और मुझे नहीं खाना, जो काम कर रहे थे वो करो। इतना कहकर आयांश ऊपर अपने कमरे में चला गया।
राधे आह भरते हुए बोला, आज तो आयांश बाबा बहुत गुस्से में है, बस अब वो खाना खाने के लिए मान जाए, वरना भगवान जाने आगे क्या होगा। थोड़ी देर बाद आयांश नहाकर अपने बाथरूम से बाहर आया। उसके रूम का दरवाजा खुला था, तभी उसकी नज़र राधे पर पड़ी। आयांश ने उसे आवाज़ दी, सुनो। राधे दरवाजे पर खड़ा था। जी आयांश बाबा, आयांश बोला। खाया खाना उसने? राधे अपने हाथ में पकड़ी ट्रे की ओर देखते हुए आयांश की ओर देखता है। आयांश ने ट्रे पर नज़र डाली, जिसने वैसे ही खाना पड़ा था। आयांश बोला, नहीं खाया राइट? राधे बोला, मना कर दिया, कहा भूख नहीं, ले जाओ। आयांश अपने कमरे से बाहर निकलते हुए बोला, आओ मेरे साथ। आयांश आरवी के रूम में गया। आरवी बेड के पास जमीन पर बैठी थी। आयांश को वहां देखकर वो फट से खड़ी हो जाती है। आयांश ने राधे को टेबल पर खाना रखकर वहां से जाने को कहा, और राधे खाना रखकर रूम का दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है। आयांश खाने की ओर इशारा करते हुए बोला, खाना खाओ। आरवी आयांश की ओर देखते हुए बोली, नहीं खाना, और मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे भूख नहीं। आयांश बोला, कितने दिन भूख नहीं लगेगी, कितने दिन तक खाओगी पियोगी नहीं। आरवी बोली, पता नहीं, और आप यहां से जाने दीजिए, क्या पता आज ही भरपेट खा लूं। ये सुन आयांश हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम्हें क्या लगता है भूखी प्यासी रहोगी तो मुझे तुम पर तरस आ जाएगा? आरवी बोली, उम्मीद भी नहीं है। आयांश आरवी की ओर थोड़ा बढ़ते हुए बोला, रखना भी मत, और हाँ चुपचाप खाना खाओ बिना कोई ड्रामा किए। आरवी बोली, क्या बात है, बड़ी फिक्र हो रही है। डोंट वरी, कुछ वक्त ना खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी, और वैसे भी कल दोपहर को खाया था सो मेरा मन नहीं है, तो आप भी जाइए और अपना खाना भी ले जाइए। टेबल के पास जाकर खाने की ओर इशारा करते हुए आरवी को इस लहजे में बात करते देख आयांश गुस्से से तिलमिला जाता है और उसकी कलाई पकड़ उसे अपने करीब कर लेता है। आरवी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी कलाई उसकी पीठ से लगाकर उसकी आंखों में देख आयांश कहता है, मुझसे बगावत करने की कोशिश मत करो, मोहब्बत नहीं है तुमसे जो कि थोड़ा सा भी पिघल जाऊंगा, बेहिसाब नफरत है, और मेरे खिलाफ जाकर मेरी बात ना मानकर तुम्हारी ही तकलीफ पड़ेगी, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। क्रमशः